सखी हो जाऊँ, उनकी पाल्य दासी हो जाऊँ। ऐसे यदि कोई अनुरुद्ध माना, अनुरोध करने वाला है, प्रार्थना करने वाला है, किस से? ललिता जी से। तो शब्दस्तदिष्ट घटने न पिता, शब्द शब्द मैंने तत्क्षणात् तद सद अदिष्ट घटने न, उसके इस अभिलाषा को घटा कर मैंने दे करके कृतार्थ जनते उसको कृतार्थ कर देती। बहुत ही दुर्लभ चीज़ है, किंतु उसको भी यदि इनको कोई प्रार्थना करता है, अनुरोध करता है, तो वो साथ ही साथ में भीतर के हृदय के भाव को जान करके और उसको प्रदान करते हैं। ब्रज घर में कहीं भी किसी युवती को देख करके अपनी प्रिय सखी राधिका जी के प्रति स्वपक्ष की गंध है इसके अंदर में, ये राधिका जी का पक्ष है, ये यदि जान लिया तो क्या करती हैं, उसी समय सारी उसकी मन कामनाओं को पूर्ण करके कृतार्थ कर देती हैं और राधा जी की पाल्यदासी बना देती। ऐसी परम मनोहरी मनोहारिणी सर्वगुरु संपन्ना ललिता जी के चरणों में मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। राधा बजेंद्र सुत संग मरंग चर्चा बरजान विनिश्चितवती निखिलोत्सवेभ्य तंग गोकुल प्रिय सखी निकुरंब मत मुख्या देवी गुणेश ललिता ललिता। राधा ब्रजेंद्र सुत संगम रंग चर्या, राधा गोविंद के परस्पर मिलन कराकर उनका मनो विनोद करना ही उनकी विलास में जो रंग है मिलन में, उस रंग चर्यान चर्यान माने परिचर्या इत्यादि के द्वारा बरजान विनोद करना ही इनका सब अभिष्ट है। दूसरे निखिल उत्सवों में से इन विनोदन कार्य में ही जिनकी अधिक स्पृहा है, बरजान विनिश्चितवती निखिलोत्सव जितने भी निखिल उत्सव है उनमें इन दोनों की सेवा करना ही जिनका प्राण के स्वरूप है अधिक स्प्रिया है। भोग की कामना नहीं है इसका ये तात्पर्य। गोकुल की प्रिय सखियों में भी सर्व प्रधान है, तंग गोकुल प्रिय सखी निकुरंब, निकुरंब माने समूह, समूह में जो मुख्या सब में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे सारे गुणों की धाम स्वरूपा ललिता जी को नमस्कार। अब हम लोग ललिता जी के प्रति नमस्कार कर और आत्मसमर्पण कर उनसे प्रार्थना कर अब चैतन्य चरितामृत से श्रीमती राधिका के संबंध में जो वर्णन किया गया है उसको हम आरंभ करें। चौथा अध्याय आदि चैतन्य चैतन्यमृत का आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद को हम लोग जहाँ तक होगा जब तक चलेगा तब तक हम लोग पूर्ण रूप में इसको पाठ करें। चतुर्थ स्तंभ खूब सावधानी के साथ में इस सबका श्रवण करें। वो ललिता के श्रीमती राधिका जी के जन्म के दिन में जैसे कृष्ण के लिए हुआ था ना स्तव स्तुति प्रार्थना इत्यादि हम लोग 7 बजे से आरंभ किया, ऐसे ही 7 बजे से हम लोग आरंभ करें। उसके पहले आरती होगी, कीर्तन होगा, इसके बाद में हम लोग फिर बैठेंगे, स्तव स्तुति प्रार्थना इत्यादि हम लोग सब करेंगे। इसके बाद में चाव आएगा 9 बजे तक और इसके बाद में अभिषेक करेंगे, दूध दही घी गुड़ा मधु इत्यादि के साथ में विधिवत सब लोगों को जो कि दीक्षित हैं उन सबको सुजोग देंगे हम लोग और इसके बाद में प्रसाद वितरण करके उत्सव को समाप्त करेंगे और सायंकाल उनके संबंध में हम लोग वर्णन करेंगे और फिर चैतन्य चैतामृत इत्यादि को हम लोग वर्णन करेंगे। श्री चैतन्य प्रसादेन तद्रूपस्य विनिर्णयम् बालोपकृते शास्त्रम दृष्ट्वा ब्रज विलास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कस्तूरी मंजरी और राधा कृष्ण के अत्यंत प्रिय रूप गोस्वामी के अनुगत जनों में से एक अन्यतम है, विशेष करके रूप और रघुनाथ जी के ये कृपा पात्र, वैसे तो समस्त गोस्वामियों के इन्होंने अपने प्रेम से, प्रेममयी उपासना से राधा कृष्ण का दर्शन किया, वृंदावन का दर्शन किया। नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से इनको सब कुछ प्राप्त हुआ। वृद्ध वयस में इन्होंने चैतन्य लोगों के, महाप्रभु के जितने भक्त लोग थे उस समय, रूप गोस्वामी तो नहीं थे, उनके कृपा पात्र गोविंद मंदिर के पुजारी हरिदास जी और सब दर्शनों थे, लोकनाथ गोस्वामी थे, रघुनाथ दास गोस्वामी थे, रघुनाथ भट्ट भी थे पूर्व सनातन जी में, और सब वैष्णव लोग थे। उन्होंने सबसे आदेश मांगा, सब लोगों ने आदेश दिए, किंतु भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, प्रबोधानंद सरस्वती इत्यादि निरपेक्ष वैष्णव लोगों, जो अकिंचन दीनहीन अपने को समझने वाले, उन लोगों ने कहा हम तुमको बतला रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं और उनकी लीलाओं का वर्णन भी तुमको हम बतलाएँ, किंतु हमारा नाम कहीं मत लिखना और हमारी प्रशंसा कहीं मत करना। इसलिए नाम तो दिया है किंतु उनकी प्रशंसा इत्यादि उनके आदेश को पालन करने के लिए, किंतु जितने भी चैतन्य चैतामृत में दिया है सब उन्हीं लोगों के विचारों को इसमें दिया है, विशेष करके रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद इत्यादि के विचारों को दिया है। महाप्रभु की लीला सबसे गंभीर लीला है, यहाँ तक कि कृष्ण लीला से भी गंभीर है। इसको साधारण लोगों के हृदय में प्रवेश करना बड़ा भारी कठिन है, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु उस प्रेम को देने के लिए आए हैं जिसको आज तक आविर्भूत जितने भी अवतार हैं, यहाँ तक कि कृष्ण भी स्वयं नहीं दे सके हैं, उस प्रेम को सरल सहज तरीके से वैमुख लोगों को भी देने के लिए आए हैं, और उसको नाम और प्रेम के माध्यम से उसको वो दिया जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, बड़े बड़े सिद्ध भक्तों के लिए, प्रेमी भक्तों के लिए भी जो बहुत कठिन है, नारद जैसे परम श्रेष्ठ भक्तों के लिए भी जो कठिन है, कलयुग जीवों को सहज रूप में देने के लिए लिया है। इसमें से तीन कारण का चतुर्थ श्लोक, चतुर्थ अध्याय, तृतीय अध्याय, प्रथम द्वितीय तृतीय में तीन कारणों को बतलाया जो महापुरुष किस लिए आए, और उसमें तृतीय इस अध्याय में प्रथम आदि के तृतीय में उन्होंने अनर्पित चरिंग चिरा करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयी तुम उन्नतोज्वल रसान स्वभक्ति हरिय पूर्ण सुंदर दूत कदम्ब संदीपिका सदा हृदय सुंदरे पुरुष में सचिन। इस श्लोक को उन्होंने रूप गोस्वामी के विदग्ध माधव से ग्रहण किया, उसमें नंदी मुख के रूप में ये प्रस्तुत मंगलाचरण की, उन्होंने मंगलाचरण में उसी को लिया चैतन्य चैतामृत के चतुर्थ श्लोक के मंगलाचरण के रूप, अपना नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, हमारे द्वारा किया हुआ मंगलाचरण ये प्रभु सुनेंगे कि नहीं, किंतु रूप गोस्वामी के द्वारा किए हुए मंगलाचरण को कृष्ण अवश्य समझ, इसलिए रूप गोस्वामी की, महाप्रभु जी की कृपा पाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, मंगलाचरण किया। हम लोगों को भी ऐसे ही मंगलाचरण करना चाहिए, अपना नया बना करके करने से नहीं होगा, महाप्रभु के जो परम भक्त हैं उन्हीं का मंगलाचरण इत्यादि हम कर सकते हैं। कहते हैं कि ये विषय तो बहुत गंभीर है जो कि नारद इत्यादि को नहीं मिला, ब्रह्मा को नहीं मिला, शंकर को नहीं मिला, उद्धव जी जैसे भक्तों को नहीं मिला, केवल देखे टकटकी लगा करके आश्चर्यचकित होकर के, किंतु मिला नहीं, ऐसे प्रेम को देना बहुत कठिन है, किंतु चैतन्य महाप्रभु इसको दिया इसी के लिए आए थे और दूसरा कोई कारण नहीं था। वैदिक भक्ति इसके पहले बहुत बहुत युग युगांतरों में उनके अवतारों ने ये असुरों का संहार भी किया उन लोगों ने, यहाँ तक कि नाम का भी, युग धर्म नाम का भी प्रचार उन लोगों ने किया, सब कुछ किया, किंतु किसी ने नाम और प्रेम नहीं दिया, प्रेम माने उन्नत उज्ज्वल रस को उन्होंने किसी ने नहीं, आस्वादन कृष्ण ने किया, किंतु चैतन्य महाप्रभु ऐसे गंभीर विषय को लेकर के सहज सरल रूप में सबको दिया। कहते हैं कि ऐसा एक तरफ में प्रेम इतना दुर्लभ इतना गंभीर, चैतन्य श्री चैतन्य प्रसादेन तद्रूप विनिर्णयम बालो अपि मूर्खो अपि अज्ञानो अपि, अज्ञानी जो है जिसको प्रेम का पता नहीं है ये प्रेम क्या चीज़ है, इस प्रेम को तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, साधारण प्रेम भी बालक को अज्ञानी आदमी को क्या पता है, किंतु ऐसा व्यक्ति भी कुरुते शास्त्रम दृष्टा जिनकी कृपा होने से, जिस चैतन्य महापुरुष की कृपा होने से बालो अपि अज्ञानी व्यक्ति भी मूर्ख व्यक्ति भी जिनको भक्ति का तत्व का ज्ञान नहीं रस का ज्ञान तो बहुत दूर की बात, वो व्यक्ति भी शास्त्रम दृष्टवा शास्त्र को देख करके ब्रजविलासी जो कृष्ण हैं उनके तत्व का निरूपण कर सकता है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य गंभीर है, ऊपर से तो ऐसा ही मालूम है किंतु भीतर से ये है, ओह मेरा जैसा मूर्ख घर गृहस्थी में फंसा हुआ मैं बालक हूँ इस सब तत्व में, मूर्ख हूँ, बहुत दीनता से ये कह रहे हैं। यदि चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई हमारे ऊपर में तो मेरा जैसा बालक आदमी भी मूर्ख व्यक्ति भी कुरुते शास्त्रम दृष्टि कुरुते माने कृष्ण जो ब्रजविलासी हैं उनके रूप का वर्णन कर सकता है। ब्रजविलासी कृष्ण ही कौन है? तद्रूप चैतन्य महाप्रभु जी का एक रूप है कौन? कृष्ण ब्रजविलासी के, कृष्ण के नहीं, कृष्ण कहने से द्वारकाधीश मथुरेश भी हो जाते हैं, इसलिए उनका नहीं, ब्रजविलासी के जो कृष्ण हैं ब्रज में विलास करना है लेकिन उनके रूप हैं कौन? ये उनके भाव को प्रकाश करने के लिए ये जगत में आए, विशेष करके ब्रजविलासी जो कृष्ण हैं ये राधा जी के भाव को लेकर के गौ रूप में यहाँ पर अवतीर्ण हुए हैं और उस राधा के प्रेम को बतलाने के लिए, उस तत्व को भी ये निरूपण कौन कर सकता है? महाप्रभु यदि कृपा हो किसी के ऊपर में बालो अपि एक बालक भी मूर्ख भी अनजान करने वाला भी तो भी तत्व को निरूपण कर सकता है, किंतु शास्त्रम दृष्टवा किस लिए लगाए? शास्त्रम दृष्टवा तत्व निर्णय कर सकता है, कह देगा जैसे राधा जी सबसे बड़ी है, राधा जी का प्रेम कृष्ण के प्रति है, किंतु ये सबके लिए मान्य नहीं हुआ, किसके लिए मान्य होगा? जो भक्त हैं वो लोग मान्य, महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं ये हम लोग तब बिना विरोध के मान लेंगे, जगत के लोग मानेंगे? नहीं मानते हैं, किंतु हाँ जब उनको भक्ति होती है इन लोगों के संग में और उस भक्ति के द्वारा फिर अब शास्त्र जब देखते हैं और शास्त्रों में भी महाप्रभु जी का वर्णन मिलता है तब बाध्य होकर के उसको स्वीकार करते हैं। बिना जो पढ़े लिखे लोग हैं शास्त्र जानने वाले विद्वान लोग हैं उनको तो शास्त्र का प्रमाण चाहिए और भक्तों को शास्त्र के प्रमाण की कोई जरूरत, इसलिए कहते हैं यदि मैं ऐसे कह देता जो स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी ने ऐसा कहा है, रूप गोस्वामी ने कहा है, या मैं ऐसा कह रहा हूँ ब्रजविलासी कृष्ण थे और उनके तद्रूप जो अवतार महाप्रभु हैं उनके कारणों को वर्णन करने में मैं ऐसे ही कह दूँ ये कारण है, राधा जी का भाव और कांति लेकर के तीन मुख्य भावों को राधाया कीदृशा, राधाया प्रणय महिमा कीदृशा अनय अनय बाबा अश्वादो जिनाद्भुत मधुरिमा कीदृशा, उनके द्वारा आप जो मधुरिमा कृष्ण की आस्वादित हुई थी वो कैसी है और माधुरिमाओं को आस्वादन करके चारों प्रकार की माधुरिमा कौन वेणु रूप गुण और लीला इनको आस्वादन करके उनको कैसा सुख उत्पन्न हुआ, हम कह देंगे जी ऐसा हुआ, नाम नहीं बतलाएंगे ये कैसे हुआ, कारण कोई नहीं दिखलाए, शास्त्र की वचन को हमने नहीं उद्धार किया, हमारी बात कोई नहीं। केवल हम लोग कहते हैं जो चैतन्य महाप्रभु भगवान है तो कोई नहीं मानेगा। यहाँ तक कि कृष्ण चरित्र को राधा जी गौरांग चरित्र लिखने वाले वो वृंदावन के एक प्रभुदत्त ब्रह्मचारी कल्याण प्रेस गोरखपुर वाले और दूसरे संप्रदाय के लोग कोई भी महाप्रभु को भगवान नहीं माने। पढ़े चैतन्य चरितम उन्हीं से उनका चरित्र दे रहे हैं, किंतु ये भगवान है स्वयं कृष्ण ये नहीं देते, बाकी और सब चरित्र। तो उनका ये भक्ति कैसी है, केवल अपने नाम और प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने किया, असल अंश को छिपा करके बाकी सब वर्णन किया। तो अभी लोग आकृष्ट हो रहे हैं, उनको कुछ न कुछ लाभ ही होता है, तब मूल ग्रंथ को देखते हैं, उसमें सब प्रमाण देखते हैं, ये महाप्रभु जी स्वयं भगवान। अंत कृष्ण वही गौरंग इत्यादि हिमांगो बरांगश्चंदनांगदी सुवर्ण वर्णो हिमांगो बराश्चंदनांगदी इत्यादि ये सब हैं। श्रीमद्भागवत में कृष्ण वर्णो तिशा कृष्ण सांगोपाकां पार्षदम जगह हर संकीर्तन प्राय जजंती ही ये सब दिया और सब हजारों प्रमाण दिया, तब जा कर के वो मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। इसलिए कहते हैं मैं केवल ऐसे ही नहीं कहूँगा, ऐसे ही वर्णन नहीं करूँगा, शास्त्र प्रमाण के साथ में हमारे गोस्वामियों ने जो शास्त्र प्रमाण दिए उसके आधार पर ब्रजविलासी की जो लीलाएं हैं कृष्ण की और उसी अपनी पंछाओं को लेकर के जो आए और आस्वादन किया नाम नहीं राधा जी के भाव कृष्ण के प्रति जो है उस महाभाव इत्यादि का वो जगत को दिखलाने के लिए और किसी को लोभ होने पर वैसी कुछ उसकी एक छींच जगत को देने के लिए उज्ज्वल रस का ये चैतन्य महाप्रभु इस तत्व को सहज ही वो निर्णय कर सकता है शास्त्र के दृष्टिकोण से। क्या हुआ करें मैं बालक अब क्यों, किंतु महाप्रभु जी की कृपा हुई। कैसे कृपा हुई, स्वरूप दामोदर जी की कृपा रघुनाथ पर हुई, महाप्रभु जी की कृपा रूप और सनातन गोस्वामी इत्यादि पर हुई और उनकी कृपा से उनके हृदय के अंदर में जो प्रेम छलका उसकी एक दो किरणें एक दो बूंदे छींटे हमारे ऊपर रघुनाथ दास जी का इन्होंने संग किया था। इसलिए एक बालक व्यक्ति भी शास्त्र को के अनुसार में उनका तत्व निर्भर कर सकता है। अब वही ज्ञान करने के लिए जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। अब यहाँ पर ये दे रहे हैं पांचवें श्लोक की व्याख्या कर, चतुर्थ का हो गया है अनर्पित चरण की व्याख्या हो गई है, पांचवा का दे रहे हैं उसके लिए ये कर जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त। बहुत गंभीर विषय जा रहे हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत चंद्र और गौर भक्त गदाधर पंडित इत्यादि की वंदना करके उनसे शक्ति संचरित करने के लिए प्रार्थना करते हुए एक कारण बिना उनकी कृपा के नहीं होगा। यदि ऐसा विश्वास नहीं होना तो ये भक्ति हो ही नहीं सकती। एक बात याद रखना, भक्ति में सबसे बाधा क्या चीज है, वही दस नमा अपराधों में सबसे भयंकर पहला है साधु संतों को किसी प्रकार से गुरु पदाश्रय करके भगवान का नाम आरंभ किया है, उसमें कोई दोष त्रुटि भी हो खबरदार निंदा बंद करो, तनिक भी निंदा हो सकता बिना दोष का, जब तक कि प्रेम नहीं होता तब तक दोष रहेंगे, निंदा मत करो भले ही उनसे अलग रहो, किंतु यदि वाणी से निंदा की तो बिजली की करंट की भांति जैसे बिजली वहाँ पर जल रही है और आग लग गई और बाल्टी से पानी उसको निभाने के लिए दूर करने के लिए शांत करने के लिए पानी यहाँ से बाल्टी का फेंका तो पानी के साथ बिजली का करंट लग करके तुम बन जाएगा। बालक नहीं समझता, ठीक इससे भी भयंकर है वैष्णव निंदा। उसी के निंदा करने के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से उछट हमारे किसी भी स्थिति में वैष्णव की निंदा, साधुओं की निंदा, गुरु की अवज्ञा, तथार्थवादम हरिनाम कल्पनम नाम के बल पर पाप बुद्धि, ये सब मत कर। इसका समस्त शास्त्रों ने और समस्त आचार्यों ने इसके लिए हंसी दिलगी में भी मत करो फिर निंदाई, हंसी दिलगी में किसी का दोष मत देखो, उसके गुणों को देखो। कोई वैष्णव यदि हुआ है, दीक्षा लिया है, हरिनाम लिया है, कोई ना कोई जरूर गुण है, नहीं तो वो कैसे टिका हुआ। उनके गुणों का अनुसंधान, उसके दोषों को कभी कदापि मत देखो। यदि कुछ ऐसा दिखता है तो उसे थोड़ा सा दूर रहो, किंतु निंदा इत्यादि नहीं। इसलिए सब वैष्णव की वंदना स्तुति स्तव भी करना चाहिए, यदि हो गया तो क्या करना चाहिए, परिताप पूर्वक रोते रोते क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए उनके निकट जाकर। मैं कैसे उनके निकट जाऊं, यदि जीवित है तो जाओ और उनसे निकट भिक्षा प्रार्थना, और यदि जीवित नहीं है तो क्या करो, रिपेंट करते हुए अश्रु पूरित नैनों से पुनः पुनः उनसे प्रार्थना, और नहीं तो ऐसे करते करते अभ्यास होकर के गुरु जी की निंदा, भगवान की निंदा, सभी की निंदा करते करते रसातल मिल जाएंगे। इसलिए गौर भक्तों की ये वंदना कर रहे हैं। चतुर्थ श्लोक अर्थ पहले निर्विवरण, चतुर्थ श्लोक का विवरण किया अर्थ क्या, पहला बतलाया, उसके पहले बतलाया भगवान के अवतार का कारण है जदा जदा ही धर्मस्य भला निर्भवति नारद अभ्युत्थान अधर्मस्य परित्रणा तदात्मान परित्रणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। इस श्लोक पर विचार करना चाहिए। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की अभ्युत्थान होने पड़ती है। माने क्या, नास्तिक लोग धर्म का कुर्ता पहनकर वेश बनाकर अधार्मिक बातों को ही धर्म की संज्ञा देते हैं। इसको कहते हैं अधर्म का अभ्युत्थान। जैसे नास्तिक लोग आजकल प्रचार करते हैं धर्म कर्म की कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति के तरफ में मत जाओ, यदि एक दुखी जीव को गरीब अन्न को एक अन्न एक मुट्ठी अरे एक कपड़ा दे दो तो इससे भगवान की और दूसरी कोई सेवा नहीं। रोगियों के लिए उनकी चिकित्सा कराने के समान में और कोई सेवा नहीं, लगड़े लीढ़ों कोई सेवा ही भगवान की यथार्थ सेवा है, और कोई सेवा नहीं। भगवान का नाम करना इत्यादि शब्द पूछना है, और इसी के आड़ में अपने वो अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। ये सब अधर्म जब बढ़ जाता है, जैसे कर्ण कहता है, दुर्योधन कहता है हम लोग परम धार्मिक हैं, कृष्ण अधार्मिक है, पांडव लोग अधार्मिक है, बतलाओ तो एक स्त्री के पांच पति होते हैं, इसे बढ़कर के अधर्म क्या हो सकता है। देखो तो इनके यहाँ झूठा लबार धूर्त इनका मित्र बना हुआ है, कौन, कृष्ण, जिनके बाप का माता का कुछ भी ठीक नहीं, बातों का ठीक नहीं, जन्म से ही चोरी करना सीखा है, ऐसे व्यक्ति इसके सहायक हैं जो कि झूठ बोलता है सब समय। अर्जुन भी वैसे ही, उनके भक्त लोग भी ऐसे, जयद्रथ को खुले आम झूठ बोल करके मारा और मरवाया इत्यादि सब आरोप कर और अपने को धार्मिक कर। तो जब ऐसे अधर्म की बढ़ती हो जाती है तब तब भगवान का जन्म, कौन, ये सब युग धर्म है, विश्व को सृष्टि करके उसका पालन करना, जो पालन करने का काम है ये विष्णु का है, कौन, क्षीरोदशा, जैसे क्षीरोद अर्थात तो दूध युक्त मैया अपने स्तन से बच्चों का पालन करती है, ऐसे विष्णु सबका पालन पोषण, इसलिए असुर को संहार करके और जीवों को पालन पोषण करना ये विष्णु का कार्य है। इसलिए युगावतार में ब्रह्मा देव ये विष्णु और सब अपने अंश के द्वारा युगावतार होकर के आते हैं, यही लोग दुष्टों का संहार और युग धर्म का बचाते हैं। ये कौन है? कृष्ण स्वयं नहीं है, नहीं प्रति युग युग में आते हैं, युगे युगे है ना उसमें संभव युगे युग युग में कृष्ण के लिए उन्होंने बतलाया है तृतीय अध्याय में, ये एक कल्प में एक बार आते हैं, वो भी कब कल्प में? सप्तम मन्वंतर में, द्वापर के अंत में आते हैं, बस एक बार आते हैं और उसी के बाद में महाप्रभु जी आते हैं कलिजुग में। तो एक बार आते हैं, तो ये कैसे कहा गया जी कृष्ण ही आते हैं? मैं आता हूँ कृष्ण ने कहा गीता में, इसलिए वो और उनके अवतार जितने हैं अंश और कला उस सबको मैं ही हूँ इस प्रकार से कह करके उन्होंने कहा स्वयं कृष्ण नहीं आते। इस पर हम लोग अगले दिन व्याख्या करेंगे, आज यही वंशा कल्प तुर्भ्य कृपा सिंधु पति कौन है? कोई आए हैं? आ जाओ जल्दी।
राधे जय जनना। साईं महाराज की जय।